कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 10वीं पुस्तक दूसरा शमूएल का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा। श्रोताओं, इससे पहले कि आज का अध्ययन हम शुरू करें, आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
पापों को धो दे, कर दे क्षमा, मुझको कर ले कबूल, मुआफी मोहब्बत और चौखट को यीशु, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं उन श्रोता मित्रों का धन्यवाद देता हूं जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर हमें पत्र लिखते हैं। मित्रों, मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी वचन को सुनने के बाद जो आशीष प्राप्त करते हैं हमें अवश्य लिखें, ताकि मुझे भी आपके पत्रों को पढ़ करके आनंद प्राप्त हो। मित्रों, आज मैं फिर से आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इन दिनों शमूएल की पुस्तक के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दाऊद अंततः वाचा का संदूक लाने में सफल हुआ और बहुत ही अधिक आनंदित था, यहाँ तक कि उसने राजसी वस्त्र भी उतार दिए और नाचने लगा। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अध्याय 7 में, जिसका मुख्य विषय है परमेश्वर ने दाऊद के परिवार को स्थापित करने की वाचा बांधी। मित्रों, यही कारण है कि अध्याय 7 बाइबल के महान अध्यायों में से एक गिना जाता है। इस अध्याय से आगे बाइबल का संदेश दाऊद के साथ बांधी परमेश्वर के इस वाचा पर आधारित है। दाऊद की यह मनोकामना थी कि वह परमेश्वर की वाचा के संदूक के लिए एक भवन का निर्माण करे। इस योजना में भविष्यद्वक्ता नातान दाऊद के साथ था, परंतु परमेश्वर ने नातान को दर्शन देकर कहा कि वह दाऊद को मंदिर निर्माण नहीं करने देगा, क्योंकि उसके हाथ रक्त रंजित थे, उन्होंने बहुत हत्याएं की थी। फिर भी परमेश्वर ने उसकी इस सत्य निष्ठा के लिए उसे सराहा और इसके बदले में उसने दाऊद के घराने को स्थिर रखने की प्रतिज्ञा की। मेरे मित्रों, परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि वह दाऊद के वंश से एक राजा खड़ा करेगा और उसे राज्य देगा। वह सुलेमान ही नहीं, मसीह के विषय कह रहा था। वह महान दाऊद का महानतम पुत्र होगा और उसका राज्य अनंत काल तक का होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने शपथ खाकर इस प्रतिज्ञा को मुहरबंद किया। हम भजन संहिता 89 उसके 34-37 पद में पाते हैं, दाऊद समझ गया था कि उसके वंश से एक ऐसे राजा का उदय होगा जो मनुष्यों से महान होगा। मित्रों, यहां पर स्पष्ट होता है कि इस वाचा को समझे बिना किसी भी भविष्यद्वक्ता की वाणी को अंतर्ग्रहण करना कठिन है। भविष्यद्वाणियों के अध्ययन में आने का जन निराशपूर्ण उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे ऐसे अध्यायों पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा शमूएल की पुस्तक 7 अध्याय अब तक के पुराने नियम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अध्याय है। मेरे मित्रों, नया नियम का आरंभ है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली यह अत्यधिक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि दाऊद को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भविष्यवाणियों में पूरी होंगी। स्वर्गदूत जिब्राइल ने दर्शन में मरियम से कहा। लुका रचित सुसमाचार उसके एक अध्याय 30 और 32 पद में हम पढ़ते हैं, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। मित्रों, यहाँ पर देखिए, परमेश्वर दाऊद से किए गए प्रतिज्ञा की पूर्ति कर रहा है। पत्रस ने पेंतिकोस के दिन प्रचार करते समय दूसरा शामुएल अध्याय 7 से ही आरंभ किया था, और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 29 और 30 पद में हम देखते हैं, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है, मैं तो तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। मेरे मित्र, कृपया आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 25 से 31 पद को और 34 से 36 पद को अवश्य पढ़ें। पत्रस दाऊद को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा का संदर्भ दे रहा था। रोमियो की पत्री अध्याय 1 उसके 1 से 3 पद में पौलुस कहता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यत वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, नया नियम प्रभु यीशु के वचनों से अंत होता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे, मैं दाऊद का मूल और वंश और चमकता हुआ तारा हूं। मित्रों, नए नियम में दाऊद के 59 संदर्भों में से ये कुछ ही हैं। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने राज्य के विषय अपनी भविष्यवाणी 2 सामुएल अध्याय 7 में दी गई परमेश्वर की इसी भविष्यवाणी पर आधारित रखा था। आप देखेंगे कि पुराने नियम का प्रत्येक भविष्यवक्ता दाऊद और राज्य के प्रति उसे दी गई भविष्यवाणी पर ही आधारित था। मित्रों, अंततः स्वर्ग का राज्य वरन परमेश्वर द्वारा दाऊद को दिया गया प्रतिज्ञा का यह राज्य क्या था, सुनिए यर्मिया अपने पुस्तक 23 अध्याय उसके 5 पद में क्या कहता है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। मेरे मित्रों, भविष्यवक्ता के लिए राज्य का विषय ही मुख्य भजन था। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और इस अध्याय को ध्यान से देखेंगे। दाऊद के मन में मंदिर बनाने की कामना। 2 सामुएल 7 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नाम भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नाता ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। मित्रों, आइए हम इन पदों की पृष्ठभूमि को देखें। हमने यह तो देखा कि दाऊद ने यरूशलेम जीतकर उसे अपनी राजधानी बना लिया था, और सूर देश के राजा हीराम ने दाऊद के लिए सियोन पर्वत पर राजमहल बनवाया था। दाऊद अंत में परमेश्वर की वाचा का संदूक भी यरूशलेम में ले आया। एक दिन दाऊद जब अपने महल में था, तब वह वाचा के संदूक के विषय में सोच रहा था। मेरे विचार में उस रात यरूशलेम में वर्षा हो रही होगी, और ऐसे ही रात में दाऊद नींद से जागा होगा और उसने हीराम अर्थात अपने मित्र द्वारा बनवाए गए अपने सुंदर महल पर वर्षा की बूंदों के गिरने की ध्वनि सुनी, तो उसे परमेश्वर की वाचा के संदूक का स्मरण हुआ। संभवतः वह मिलाप वाले तंबू से हवा के टकराने की आवाज को सुन सकता था, अतः उसने सोचा कि उसे परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहिए। उसने अपने भविष्यद्वक्ता नातान को बुलवाकर उस पर अपने मन की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि वह तो महल में रहता है और परमेश्वर की वाचा का संदूक तंबू के पर्दों में रहता है। नातान ने प्रसन्न होकर कहा कि वह अपनी योजना में आगे बढ़े, परंतु यहाँ एक स्थिति ऐसी है कि भविष्यद्वक्ता से चूक हुई। उसने दाऊद से कहा, तेरे मन में जो भी है उसे पूरा कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। मेरे मित्रों, यदि मैं वहां होता तो मैं भी यही कहता। और सच तो यह है, यदि कोई आकर मुझसे कहता, भाई कामिल, हम आपकी रेडियो सेवा के लिए कुछ दान देना चाहते हैं, तो मैं आपसे सच कहता हूं कि मैं उनसे यह नहीं कहता कि मैं घर जाके प्रार्थना करूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा करना उचित होगा कि आपसे मैं दान लूं। मेरे मित्रों, मैं तो यही कहता। जी हाँ, हम भी तो यही चाहते हैं। अति संभव है कि मेरा यह निर्णय परमेश्वर की इच्छा में ना हो। मैं समझ सकता हूं कि नातान की भावना क्या थी। दाऊद की योजना अति उत्तम प्रवृत्ति की थी। नातान के लिए भी परमेश्वर के भवन निर्माण से बढ़कर अन्य कोई बात नहीं थी, परंतु उसका विचार उचित नहीं था, क्योंकि जैसा हम देख चुके हैं, दाऊद के हाथ रक्त रंजित थे। अपने पाप से पूर्व ही उसके हाथ रक्त रंजित थे। परमेश्वर ने उससे कहा, तू मेरे लिए भवन निर्माण नहीं करेगा। तथापि यह दाऊद की हार्दिक इच्छा थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे इसके लिए सराहा। मेरा अपना विचार तो यह है कि हम उस मंदिर को सुलेमान का मंदिर कहने की भूल करते हैं, क्योंकि दाऊद ही ने उसकी सब सामग्री और ठेकेदार से सब प्रबंध किए थे। सुलेमान ने तो केवल योजना को कार्य रूप दिया था, अतः उस मंदिर को दाऊद का मंदिर कहना उचित होगा। हम दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसके 4-6 पद में पढ़ते हैं, उसी दिन रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन से मैं इसराइलियों को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उसी रात नातान से कहा, तू दाऊद को दिए गए अपने वचन में सुधार कर, उससे कहना कि मैं उसके इस विचार को सराहता हूं कि वह मेरे लिए भवन निर्माण करना चाहता है, परंतु मैंने उससे नहीं कहा कि वह मेरे लिए भवन बनवाए। मैंने अपने किसी भी जन को नहीं कहा कि वह मेरे लिए भवन बनाए। परमेश्वर तो अपनी प्रजा से भेंट करने तंबू में ही आता और जाता था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ अपनी एकता स्थापित करता था। मित्रों, यही कारण था कि 2010 वर्ष पूर्व मसीह यीशु इस संसार में आया और मानव देह धारण की। यूहन्ना ने लिखा है 1 अध्याय उसके 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। मित्रों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है डेरा किया, अर्थात तंबू गाड़ा, हमारे मध्य में रहा। कपड़े के दुर्बल तंबू की अपेक्षा परमेश्वर ने मांस के इस नाशमान देह रूपी तंबू में मनुष्य से भेंट की। वह इस पृथ्वी पर और हमारे साथ एकता बनाए रखा। परमेश्वर ने तो हमेशा ही अपने लोगों के साथ एकता बनाए रखी थी। मित्रों, आज क्या हम परमेश्वर के साथ एकता बनाए रखना चाहते हैं? दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जहां जहां मैं समस्त इसराइलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इसराइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इसराइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनाया? मेरे मित्रों, कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मंदिर निर्माण दाऊद का विचार था, परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। परमेश्वर निश्चय ही उसे मान्यता प्रदान करता है। तो आइए हम आगे पढ़ें, दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसका 8 पद, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने दाऊद से कहा, तू तो भेड़ चराने वाला एक युवक ही था और मैंने तुझे अपनी प्रजा पर प्रधान ठहराया है। हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसके 9 पद में, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान महान कर दूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर की पुस्तक में दाऊद इस पृथ्वी पर वास करने वाले सर्वोत्तम महापुरुषों में से एक था। दाऊद की तुलना किसी भी विशिष्ट शासक से करके देखें। यदि मैं भविष्यद्वक्ताओं को सही समझ सकूं, तो यह परमेश्वर की इच्छा है कि मृतकों के पुनरुत्थान पर वह दाऊद को मसीह यीशु का प्रतिशासक बनाएगा सहस्त्र वर्ष के राज्य में। आइए हम आगे पढ़ें दूसरा शमूएल 7 अध्याय के 10 पद में, और मैं अपनी प्रजा इसराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसे कि पहले दिनों में करते थे। मित्रों, परमेश्वर यही करने जा रहा है। यहां परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखें। पहला है एक स्थान ठहराऊंगा और दूसरा है उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी। मेरे मित्रों, यह बहुत पुरानी बात है और सच तो यह है कि परमेश्वर ने 3000 वर्ष पूर्व यह प्रतिज्ञा की थी और अभी यह पूरी नहीं हुई है, परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। हम दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इसराइल के ऊपर न्यायी ठहराता था और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा और यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने नातान से कहा, तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। तब दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के लिए भवन निर्माण करना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, दाऊद तू ऐसा नहीं करेगा, तेरे हाथ रक्त रंजित हैं, अर्थात तेरे हाथ खून से सने हैं, तू मेरे लिए भवन बनाने योग्य नहीं है, परंतु मैं तेरे मन की इच्छा का मान रखता हूं, मैं तुझे मेरे भवन निर्माण का श्रेय देता हूं और तेरा घर बनाए रखूंगा। क्या यह परमेश्वर का ही स्वभाव नहीं? मेरे मित्रों, आप परमेश्वर से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम में से अधिकांश आज बहुत गरीब हैं। इसका कारण यह भी है कि हम परमेश्वर के नहीं के बराबर कुछ करते हैं। हम ऐसी स्थिति में नहीं आ पाते हैं कि वह हमारे लिए बहुत कुछ करे। हम दाऊद से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दाऊद परमेश्वर के लिए एक महान काम करना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उससे भी अधिक बड़ा काम उसके लिए कर दिया। दूसरा शमूएल 7 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे मित्रों, यह एक महान बात है। हमने नए नियम रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 उसके 3 पद में देखा है कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के मूल से है। परमेश्वर ने दाऊद से कहा था, मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। परमेश्वर सुलेमान नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा था। हम शमूएल उसके 7 अध्याय के 13 पद में आगे देखते हैं, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मित्रों, अब हम सुलेमान के बारे में देखते हैं। वंशानुक्रम में वही अगला था, तथापि राज्य सुलेमान के पार दूर भविष्य से संबंधित है। मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, यह दाऊद की राजगद्दी के बारे में कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन दाऊद की राजगद्दी पर बैठेगा और यही संदेश जिब्राइल ने मरियम को दिया था, जिसे हम लूकारचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 32 पद में पढ़ते हैं। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तब हम आगे देखते हैं दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसके 14 पद में, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर फिर कहता है कि मैं उसका पिता ठहरूंगा। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने मरियम मगदलीनी से कहा था, जिसे हम यूहन्ना 20 अध्याय के 17 पद में पढ़ते हैं, मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पिता है जो त्रिएकत्व में उसके स्थान के कारण है। परमेश्वर मेरा भी पिता है, परंतु नया जन्म पाने के कारण, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे मित्रों, जब मैंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तब उसने मुझे उसकी संतान होने का अधिकार दे दिया। यह अधिकार उन्हें ही दिया जाता है जो केवल उसके नाम में विश्वास करने से न तो कुछ अधिक और न ही कुछ कम करते हैं। परमेश्वर ने कहा है, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। मेरे मित्रों, पद 14 का अंतिम अंश एक विचित्र बात है, यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। बिशप होर्सली इसका बड़ा रोचक अर्थानुवाद करते हैं, जब उस पर अधर्म डाला जाएगा तब मैं उसे आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा और मनुष्यों के योग्य दंड दूंगा। यहाँ परमेश्वर ठीक यही कह रहा है। परमेश्वर कहता है कि जब उस पर अधर्म डाला जाएगा तब मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यह पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के मध्य एक अद्भुत अद्वितीय संबंध है, परंतु जब वह अधर्म करे अर्थात जब उस पर अधर्म डाला जाए, आपके और मेरे पाप उस पर डाले जाएं, तब उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। वह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर मरा, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण पकड़वाया गया, यही कारण था कि वह क्रूस पर मरा। पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मेरे मित्रों, पाप से चंगे हुए, यशाया नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसे रोगी कर दिया। आगे हम देखते हैं, दाऊद के वंश से जो आने वाला है वह संसार के पापों को उठा ले जाएगा। यशाया के पुस्तक में लिखा है 4 अध्याय के 6 पद में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो यह प्रभु यीशु ही के बारे में था, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। जी हाँ, हमें किस रोग से चंगाई मिली? हमें पाप से चंगाई मिली। पाप मनुष्य को ग्रस्त करने वाला विनाशकारी रोग है। यही कारण है कि परमेश्वर ने कहा, मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। हम 2 सामुएल 7 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसी न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं, जो दूसरे शब्दों में, दाऊद के वंशज घोर पाप करें तो भी परमेश्वर दाऊद और उसके वंशजों के साथ अपना उद्देश्य पूरा करेगा, और परमेश्वर ने ऐसा ही किया, वह प्रभु यीशु मसीह को संसार में लाया। 2 सामुएल 7 अध्याय के 16 पद में लिखा है, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। परमेश्वर के लिए यह महत्वपूर्ण था क्योंकि भजन संहिता 89 उसके 34 से 37 पद में लिखा है, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा, उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी, वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। मेरे मित्रों, चंद्रमा के समान सदा बना रहेगा। चांद से लाई गई चट्टानों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड 3 से 5 करोड़ वर्ष पुराना है, यह बहुत लंबा समय है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह दाऊद की राजगद्दी को चांद के समान स्थिर करेगा। परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी है और वह उसे नहीं तोड़ेगा। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं 7 अध्याय के 17 पद में। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय में कि परमेश्वर दाऊद के साथ नातान के द्वारा से वार्तालाप करता है और उससे कहता है कि वह अपने परमेश्वर के लिए भवन कभी न बनाने पाएगा क्योंकि वह पापी है, अर्थात हत्यारा है। फिर भी वह उसे सराहता है उसके कार्यों के लिए और उससे वह वाचा बांधता है कि उसके राज गद्दी सदैव बनी रहेगी। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है और इस बात को आपने देखा है कि दाऊद किस प्रकार का व्यक्ति है जिससे परमेश्वर अपनी आशीषें और आशीषें सदैव देता रहता है। क्यों ना आज हम भी उस आशीष को प्राप्त करें, उसे ग्रहण करें और अपने जीवन में अपनी शांति जो परमेश्वर की है प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाले, आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली, रूह के मसा से भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली, आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली।
सा